بڑا ہی میں سمجھتی ہوں کہ اہم اور متبرک موضوع ہے امام رضا علیہ السلام کی جو عبادی زندگی ہے, عبادی پہلو ہے جو اس کے اوپر بات چیت کرنا. لیکن ان کی عبادی زندگی کی طرف روشنی ڈالنے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے متبرک زندگی کے اوپر مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں, باجی رباب کی خدمت میں اور اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور ان ایام شہادت کی مناسبت سے تاثیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. دیکھیں, جب ہم 28 سفر کی صبح کو جب سورج آسمان پر بلند ہوتا ہے تو یہ تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک غم کا پیغام لے کر نمودار ہوتا ہے, کیونکہ آج کے دن کا آغاز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور جناب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پرسوز شہادت کے واقعات کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سن 203 ہجری یا بعض روایات کے مطابق سن 202 ہجری میں 29 سفر کو حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا پرسوز واقعہ پیش آتا ہے. اگر ہم اس کی تمام کڑیاں سلسلہ نبوت کے ساتھ اس امامت کو منسلک کرتے ہوئے دیکھیں تو بہت سارے پیغامات اور بہت سارے اشارے اور بہت سارے تجلیاں ہمارے لیے ان واقعات کے اندر پوشیدہ ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام رضا علیہ السلام 148 ہجری 11 ذی قعد کو آپ کا ولادت ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی پرورش کے مراحل, آپ کے بچپن کے مراحل, آپ کی جوانی کے مراحل, ان سب کے اندر جو سب سے اہم چیز دکھائی دیتی ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی وہی عبادات ہیں جس کی کڑیاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتی ہیں. جیسے حضرت امام رضا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ جس طرح سے ہمارے لیے اس وقت کا نقشہ کھینچتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ولادت کے فوراً بعد آپ سجدے کی حالت میں, یعنی بندگی کی ابتدا, بندہ ہونے کے ناطے اپنے خدا کے لیے, اپنے خالق کے لیے آغاز کر رہا ہے اور دنیا کو دکھلا رہے ہیں کہ بندگی کا سب سے بہترین پہلو یہ سجدے کے اندر پوشیدہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رات کے وقت تھوڑا سویا کرتے تھے, زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے. یہی چیزیں ہمیں تمام ائمہ کی زندگی میں بلکہ تمام معصومین کی زندگی میں اگر میں یہ کہوں کہ خاندان نبوت کے اندر دکھائی دیتی ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام رضا علیہ السلام کے بچپن کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ روزے بچپن ہی سے رکھتے, جو کہ کتب تاریخ ہمیں بتاتی ہیں, یعنی ہر ماہ کے اندر امام رضا علیہ السلام 3 دن کا روزہ رکھتے تھے. پھر عبادات, صبح آپ کھڑے ہوتے تھے, نماز فجر سے لے کر ظہر تک آپ کے رکوع و قیام چلتے تھے, اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ عبادی زندگی فقط عبادت کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. عبادی زندگی کے اندر عبودیت سے منسلک ہر پہلو اس کے اندر شامل ہوتا ہے.
بے شک
ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر امام رضا علیہ السلام کا حسن اخلاق, آپ کا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ, آپ کی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بخشش تھی, یعنی آپ کس طرح سے فیاضی کیا کرتے تھے, سخاوت کیا کرتے تھے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادی پہلو کے اندر آتی ہیں.
بالکل
اسی طرح سے جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے میں اپنا دامن کبھی سخاوت سے نہیں کھینچا تھا, اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنے خادمین کے ساتھ زمین پر دسترخوان لگا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے آپ کی گفتگو ہوتی تھی یا آپ ان کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. یعنی آج کے معاشرے کی طرح نہیں ہے کہ ہم اگر کسی جگہ پر کسی کے تحت یا متحد کام کرتے ہیں تو وہ جو افسر نشین ہے وہ سمجھتا ہے میں نے ایک غلام کو خرید لیا.
بالکل آرڈر دینا مسلسل, جی بالکل, ہر بات کے لیے.
اور پھر اس میں دیکھیں کہ امام کی روش ان کے ساتھ کس طرح محترمانہ ہوتی تھی, यानी एक दूसरे का एहतराम बरकरार रखा जाता था। आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि अफसरशाही इस कदर आम हो चुकी है कि अगर मताहत की तरफ देखा जाए तो अगर अफसर बाला उसे कहता है कि ये काम होना चाहिए, अब वो बेचारा जिसको पता तक नहीं होता उसे कहते हैं मुझे हर तरीके से ये काम पैदा करके दो,
बिल्कुल
हर तरीके कुछ भी करो मुझे ये चाहिए हर सूरत में,
एक धमकी आमेज रवैया है
जी बिल्कुल। यानी हम अगर देखें तो हमारे अंदर जो है कमाले एहसासात की कमी होती जा रही है, हमारे अंदर एक खोखलापन है जिसको हम इस तरीके से पूरी करने की कोशिश करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के दौर में अगर हम देखें कि इसको किस तरह से, अभी मैं आपके सामने मुंसलिक करूंगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन मस्जिद में आता है, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम उस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, वो उस जगह पर आकर अपनी दौलत के मुंह खोल देता है, अपने खजानों के मुंह खोल देता है, और मदीने वालों के अंदर उस दौर के अंदर वो 50 से ज्यादा, बाज रवायात में मिलता है 500 से ज्यादा अशरफियां तकसीम करता है सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरीके से आयाज बिल्ला इमाम को नीचा दिखा सके। मगर हमने देखा तारीख में उसी जगह पर वो दुश्मन जो है जितना उसने सबके अंदर तकसीम किया था वो इमाम की नजर करना चाहता है, इससे पहले कि इमाम उसकी तरफ देखते उसी के एक गुलाम ने इमाम के लिए जूतियों को सीधा किया, इमाम ने वो पूरे का पूरा खजाना जो है उस गुलाम को बख्श दिया, दुश्मन के गुलाम को ना, वो हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का गुलाम था। यानी ये हमें दर्स देते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम किस तरह से सखावत किया करते थे अपने चाहने वालों के लिए, तो यकीनन उनके दिल बहुत बड़े थे अगर आप दुश्मनों के लिए भी वैसे थे कि वो भी आपके मुतहत हो जाते, आपके गर्विदा हो जाते, आपके आशिक हो जाते, यानी आपका एक एक कमल। फिर हम देखते हैं जब शाम में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर जाते हैं और उधर एक मोची किस तरह से हजरत इमाम हसन मुश्तबा के लिए से एक चमड़े को लेकर दरिया के अंदर ले जाके उसे पाक करता है, उसकी बीवी कहती है तू ये क्या कर रही है, यानी ये सारे वाक्यात जो हैं हमें निशान देते हैं एक तो इमाम के साथ लोगों के इश्क को, क्यों इश्क उसी वक्त किसी के साथ हो सकता है ना जब आपकी रफ्तार किसी के साथ अच्छी हो, आप अच्छे तरीके से बातचीत करें, आपकी मुलाकात किसी के साथ अच्छे तरीके से हो, आप लोगों के लिए हमदर्दी के जज्बात रखते हो,
बिल्कुल
ये सारी की सारी चीजें उसी वक्त मुमकिन हो सकती हैं कि जब हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा होगा, एहसास होगा। आज हमारे एहसासात खत्म होते जा रहे हैं, हमारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है हमें उसका एहसास नहीं,
खबर ही नहीं,
और इसके अलावा अगर हम देखते हैं किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं तो हमें अपने कुलीग के हालात से कोई खबर नहीं,
बेखबर रहते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं होता।
आज के दौर की सबसे बड़ी, देखें आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के वाकयात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सारे, उनकी सखावत के वाकयात, उनकी इबादत के वाकयात, मगर आज जरूरत यह है कि हम उनको अपनी अमली जिंदगियों के अंदर नाफिज करें।
बहुत शुक्रिया इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जो इबादी जिंदगी है उसके पहलुओं के हवाले से आप उजागर कर रहे थे उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ, अलबत्ता इबादी जो है वो सिर्फ वो यही नहीं है कि सज्जादा बिछाया और नमाज पढ़ने शुरू कर दी।
इसके बाद हम देखते हैं कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम की वो मदीने के अंदर जिंदगी जो इमाम ने तकरीबन 198 हिजरी तक गुजारी,
सही
148 से लेके 198 हिजरी तक का इमाम का उस जगह पर जो क़याम है उसके हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को दुआओं के ज़रिए से, देखें तमाम आइमा की ज़िंदगी में और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो सबसे नुमाया तरीन पहलू हमें नज़र आता है वो मुनाजात का है
जी, बिल्कुल,
कि किस तरह से अपने खालिक के साथ हमें राजो न्याज करनी चाहिए,
हमें तरबियत दी जा रही है,
हमारी तरबियत के लिए बहुत सारी वर्कशॉपों के एहतमाम की भी तमाम आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने, बिलाखस तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर, अगर उनके ऊपर कोई सबसे बड़ी मुसीबत भी तारी हुई है उस मौके पर भी उन्होंने हमें बतलाया कि किस तरह से अपने खालिक के साथ राजो नियाज करनी है, किस तरह से टूटे हुए रابطے को खुदा के साथ जोड़ना है, किस तरह से उस खुदा को दोबारा से याद करना है जिसको हम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर भूल चुके हैं। और सबसे बेहतरीन उसका तरीका ये मुनाजात थी। हज़रत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की मुनाजात तो पूरी तारीख के अंदर मशहूर हैं, जो कि सहीफ़ा सजादिया या सहीफ़ा कामिला के नाम से
बिल्कुल
तारीख के अंदर सब्त हो चुका
सारे
है। जी
मुसलमानों के लिए
बिल्कुल,
ये किताब है, किसी खास फिरके के लिए नहीं।
देखें ये बारहा चीज़ मैंने अक्सर इसी प्लेटफॉर्म से कही कि अगर हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें या आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, तो ये एक ख़ास मसलक, ख़ास फिरके या ख़ास लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंदे मुताल ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा था।
बिल्कुल
और जिस तरह से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हर जहाँ तक पहुँचेगी, उसी जगह तक आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की इमामत पहुँचेगी,
बिल्कुल
क्योंकि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं। और हम देखते हैं कि जानशीनों ने अपने वजीफे को उसी तरह से अदा किया, उसी अमानतदारी के साथ अंजाम दिया, जिस तरह के रसूल खुदा सल्लल्लाहु वसल्लम ने अपने वजीफे को, अपनी जिम्मेदारी को, और सबसे बड़ी चीज़ अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। देखें, इबादी ज़िंदगी के अंदर सबसे मुहिम तरीन जो चीज़ आती है वो आती है शोहर और बीवी का रिश्ता, उसके बाद बच्चों की तरबियत का सिलसिला। जब हम इन तमाम चीज़ों को इबादी ज़िंदगी में, आजकल हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट कायम हो चुका है वो ये है कि एक जगह पे मुसल्ला बिछा लें, काबा रुख होके नमाज़ पढ़ लें, दीगर यही इबादी ज़िंदगी है।
जी,
इबादी ज़िंदगी के अंदर हमारे तमाम मामलात आते हैं।
ये हमारे इमामों ने बताया, ये हमारे रसूल खुदा ने बताया।
जी बिल्कुल, उन्हीं की तरफ, क्योंकि ये उन्हीं की तालीमात हैं, उन्हीं की। अगर मैं ये कहूं कि आजकल जो हमारी मुहर्रम से, यकम मुहर्रम से लेकर 8 सफर तक जो ये एक यूनिवर्सिटी के दरसों का सिलसिला जगह जगह पर बरपा है, इससे बढ़ के कोई मकतब हमें ये दर्स नहीं देता जिसके अंदर इतनी ज़्यादा तरबियत के पहलू मिले। हर हवाले से, हर तरीके से बच्चों की तरबियत, बड़ों की तरबियत, बूढ़ों के फ़राइज़, बच्चों के फ़राइज़ और हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से और ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो दर्स दिया गया है, इसके साथ साथ हमें खुदावंदे मुताल के साथ उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का। देखें, हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा फ़िक्रा है, वो कहते हैं वो खुदावंदे मुताल इतना रहीम खुदा है, कभी हमारे एक आंसू से पिघल कर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और कभी 2 सजदों के बदले में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ को अपने अंदर जिंदा करें कि वाकई हमारा कोई खालिक है जिसने हमें खल्क किया है और हमें उसके साथ राबता कैसे कायम करना है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मा अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक ये सिलसिला जारी है, और आज फिर उनके नुमाइंदे इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से लोगों के दरमियान इसको फैला रहे हैं, ताकि ये जिम्मेदारी किसी मौके पर किसी वक्त भी मुतवक्किफ ना हो सके, ताकि किसी के पास कोई उज़र ख्वाही ना रह जाए, बहाना ना रह जाए कि नहीं हमें तो किसी ने गाइड ही नहीं किया, हमें कोई बताने वाला था ही नहीं। अगर हम देखें तो पूरी की पूरी ज़िंदगी, हमें हर ज़िंदगी के हर लम्हे में एक दर्स मिलता है, किसी भी इंसान से मिल सकता है, मगर आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों में सबसे ज़्यादा दुरूस और सबसे ज़्यादा सबक सीखने को मिलते हैं हमें।
बिल्कुल,
जैसे जैसे हम किसी इमाम की सीरत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर से एक ऐसे पहलुओं का सैलाब निकल के आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इमाम की ज़िंदगी के इस पहलू पर भी रोशनी डालनी चाहिए, इमाम की ज़िंदगी के इस लम्हे को भी देखना चाहिए, इमाम की ज़िंदगी की हर एक चीज़ जो इमाम हमें बतलाना चाहते हैं। देखें, सबसे बड़ी चीज़ कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें, आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से हमें सिखला रहे हैं कि हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का वाक़िया है, मस्जिद में गए, घर आए, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूरे का पूरा वाकया बयान किया। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं, बेटा ये बात कहाँ से सीख कर आए? कहा, आज मैंने इस बात को अपने नाना की महफिल से सीखा। हमारी आजकल इंसानियत इस कदर हम पस्ती में गिर चुकी है, कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं करते। एक छोटा सा हमारा अमल, एक छोटा सा काम जो कि हमारे अंदर सकत भी है उसको अंजाम देने की, हम किसी के लिए उसको अंजाम भी दे सकते हैं, मगर अपनी अना और गुरूर के अंदर आकर उस काम को अंजाम नहीं देते, जो कि ना फकत उस बंदे की नाराज़गी का बाइस बनता है, बल्कि उस बंदे के उस खुदा की नाराज़गी का भी बाइस बनता है, क्योंकि हमने मखलूक होने के नाते उस खालिक के एक फरमान को अपने पैरों के नीचे रोंद दिया।
जी बिल्कुल, जाहिर ऐसा ही है।
आज जब हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को देखते हैं, यानी देखें इमाम जो है 200 हिजरी में मदीने से मर्व की तरफ तशरीफ़ लाते हैं, और ये एक सारा वाक़िया है जो मेरे ख्याल से कल इस मौजू पर गुफ्तगू होगी, मैं इसके
जी
ज़्यादा जुज़ियात में नहीं जाना चाहता, सिर्फ़
सही।
ऊपर से आपको कि इमाम को उस जगह से मजबूर करके लाया जाता है और उन रस्तों के ज़रिए से जो असल रास्ता था उसको तब्दील कर दिया जाता
जी
है,
सख्त रास्तों
यानी
से।
जो इमाम के चाहने वालों का रास्ता था
हाँ
उससे
उसे,
बदल के
हाँ
इमाम
बदल
के
के
मुखालिफीन वाले
मुखालिफीन।
रास्ते से इमाम को जो है वो मर्व तक लाया जाता है, मगर इस जगह पर भी वो एक साजिश जो के सब जानते हैं, क्योंकि इमाम की ज़िंदगी का 20 साल इमामत का दौर 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला 10 साल दौर है जो कि हारून रशीद के साथ सख्ती और मुश्किलात के साथ इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारा।
बिल्कुल
उसके बाद 5 बरस अमीन के साथ, जिसने अपनी हुकूमत के दारुल हुकूमत को इराक में करार दिया था, उसके साथ इमाम ने वो भी सख्ती के अंदर
आयाम से।
इमाम ने उस हालात को भी गुजारा। उसके बाद आखिरी 5 साल दौरा मामून के साथ है। देखें कोई भी अपनी खुशी के तहत इमाम को खिलाफत या वलायत अहदी
नहीं
नहीं
दे।
देना चाहता
हाँ
था।
बिल्कुल,
ये सारा एक ड्रामा, एक
प्लान।
साजिश जो पूरे का पूरा नक्शा इमाम के लिए खींचा गया, उसकी बुनियाद सिर्फ ये थी किसी तरीके से मामून की हुकूमत जो है मर्व के अंदर, या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें खुरासान के अंदर साबित कदम हो सके। इसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो थी, इसने बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर लिया था सवाए अलवियों के, क्योंकि अलवी उस वक़्त एक ऐसी पोजीशन पर थे कि जिस जगह पर भी अलवी खड़े होते थे लोगों का एक हजूम उनके गिर्द इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से बगावत की एक
बिल्कुल
बू, या फिर दूसरे लफ्जों में अगर बयान किया जाए एक डर रहता था हुकूमत वक्त को। उन्होंने एक साजिश के तहत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को उधर बुलाया, पहले इमाम को खिलाफत देना चाहिए, बाद में इमाम को वलायत अहदी के लिए जो है बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। इसकी भी शराइत हैं, इमाम ने किन शराइत के तहत वलायत अहदी को कबूल किया, फिर किस तरह से पुरसूस शहादत का वाक़या मामून के दरबार में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए पेश आता है, और आखिर में जो कि इबादी पहलू का सबसे अहम जुज्व है कि इमाम जब मामून के हाथ से वो जहर आलूद अनार या अंगूर खाकर अपने हुजरे में तशरीफ़ लाते हैं तो अपने गुलाम से कहते हैं कि जब मेरी अपने खुदा से राजो नियाज की आवाज़ मुनक़ते हो जाए तो उस वक़्त समझना कि तुम्हारा इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को जो तालीमात हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन्होंने अपने फ़र्जंदों के ज़रिए से तमाम आलमीन के लिए जो तालीमात दी हैं, इंशाल्लाह के उसके ऊपर हम कारबंद रहें।